أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح لوح قلم کا ہم چھٹا لیکچر حضور مرشد کریم کی کتاب شرح لوح قلم میں جو چھٹا لیکچر ہے وہ پڑھ رہے تھے، اس میں کچھ علوم کا ذکر آیا کہ کس طرح صفات جو ہیں وہ علم بن کے انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، لطیفہ اخفا سے کس طرح وہ خفی تک نزول کرتی ہیں، اور یہ ساری بات آپ نے پڑھی. پھر کس طرح وہ علم لوح محفوظ بن جاتا ہے، کس طرح وہ عالم تمثال بنتا ہے، کس طرح یہ عالم تخلیق یا عالم ناسوت وجود میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے جو 11,000 اسماء ہیں ان کی بات ہم نے مطالعہ کی. اب یہ پیج نمبر 63 سے آج ہم شروع کریں گے. تو یہ چیپٹر یہاں سے آن ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کیسے کرنا ہے. اس علم کا تعارف تو انہوں نے کرا دیا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ تو بتا رہے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھی، انہوں نے یہ ساتھ میں ہدایت بھی دی ہے کہ یہ مرشد کریم کی خصوصی نگرانی میں ہی کیا جانا بہتر رہے گا. خود اپنے طور پہ پلیز ازراہ شفقت یہ مشقیں کرنے نہ بیٹھ جائیے گا. کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات از بس ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالی ذہن ہو کر، خالی ذہن ہونا یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. ساری 20-20 سال کے لوگ جو یہ سلوک کی راہیں پہ سفر کرتے ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کیا مراد ہے. قانون یہ ہے کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال تو آتا رہتا ہے. اب اصل میں یہ ہے کہ جو خیال آ رہا ہے بس اسی کو توجہ دیں اور چیزوں کے پیچھے نہ پھریں. تو یہی انخلاء ذہنی کی کیفیت ہے، کیونکہ جو بھی تلا ذہن میں آ رہی ہے. اب ہم خالی اس ذہن، خالی اس ذہن، خالی اس ذہن سے مطلب انخلاء ذہنی کی جو کیفیت لیتے ہیں کہ کوئی خیال بھی نہ آئے، تو پھر آپ کس کے پیچھے ہیں؟ اطلاعات تو آ رہی ہیں، ہر وقت آ رہی ہیں. دیکھیں نا، ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارا جسم سانس لے رہا ہے تو سانس کیسے لے رہا ہے؟ کسی اطلاع کے نتیجے میں سانس لے رہا ہے. تو اطلاعات تو آ رہی ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے ماحول کی گرفت سے خود کو آزاد کرنا ہے. ماحول سے توجہ ہٹا کے اپنے انر میں لے جائیں گے تو جو جو اطلاع سامنے آتی رہے گی اس کو دیکھ رہے ہیں. بس یہی انخلاء ذہنی ہے اور اسی کو خالی ذہن ہونا کہتے ہیں. لیکن ہم اس بات کا مطلب جو لیتے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے کہ بالکل ذہن بلینک ہو جائے، نتیجہ جمودتاری ہو جاتا ہے، نتیجہ ساری بات جو ہے وہ غتر بود ہو کے رہ جاتی ہے. تو انسان دوسری باتوں سے، اس میں لفظ ہے دوسری باتوں سے، یعنی جس نقطے پہ توجہ ہے وہ صرف وہی ذہن میں رہے اور اس سے ریلیٹڈ تھاٹس. کیونکہ میں نے یہ حضور مرشد کریم سے اس پہ کافی مطلب آرگو کیا، ڈبیٹ کی، بحث کی، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ اچھا برا کہیں، وہ میں نے سوال پہ سوال پوچھے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بھئی خیال پہ خیال آئے گا، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خیال مشرق کا تو ایک مغرب کا. یعنی جو بھی خیال آئے اس سے کنیکٹڈ بات آتی رہے ذہن میں تو وہ ایک ہی نقطہ کہلاتی ہے. اسی کو پھر نقطہ کھلنا کیا ہوا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ انسان دوسری باتوں سے، پہلا دیکھیں نا، اب ہم خالی ذہن کو پکڑ لیں تو یہ دوسری باتوں سے خالی اس ذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دیں. کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالی ذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے. देखें ये बात है, किसी भी इल्म को हासिल करने, आप ज्योमेट्री पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिजिक्स पढ़ें, जो भी आप सबक याद कर रहे हैं, अगर आपके ध्यान में वो नुक्ता नहीं है, वो सबक नहीं है, तो आपको वो याद हो जाएगा या समझ आ जाएगी? तो द आंसर इज नो। आगे फरमाते हैं कि इंसान दरअसल रूह आजम की हैसियत में एक याददाश्त रखता है। अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए कि इंसान कोई तीन अलहदा अलहदा स्लॉट्स में नहीं है, रूह हैवानी, रूह इंसानी और रूह आजम, ये मिलकर एक रूह बना रहे हैं। इनको तीन दर्जों पे अपने अंदर समझाने के लिए, हमारे हमें समझाने के लिए ये तकसीम की गई है कि जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं जो हमारे जानवर भी, मतलब जानवर भी कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो हैं, तो गोया हम वो रूह हैवानी की सतह पे हैं। लेकिन जहाँ पे हम इजादात और इख्तराआत कर रहे हैं, देखिए ना, जानवर क्या नहीं करते, जानवर इजादात नहीं करते, इख्तराआत नहीं करते, हथियार नहीं बनाते, औजार नहीं बनाते, आलात नहीं बनाते, ये इंसान बनाता है। तो ये जो इजादात और इख्तराआत का जोन है, ये असल में ज़हनी जोन है, ये है रूह इंसानी का जोन। लेकिन इससे ऊपर का जोन जो है वो है रूह आजम का जोन, और उस तक एक्सप्लोर करवाने के लिए ये सारी बात आप पढ़ रहे हैं कि हमारे हमें उसका, देखे ना, जितनी भी उसकी वजाहत होगी, हमारा ज़ौक शौक और तजस्सुस हमें मजबूर करेगा कि हम उस चीज को अपने अंदर उजागर करें। चीज आपके हमारे अंदर मौजूद है, पहले से मौजूद है, रोज़े अज़ल से मौजूद है, अल्लाह ने साख्त ऐसी बनाई है कि ये छह लताइफ जो है इंसान के अंदर है। तो फरमा रहे हैं कि इंसान दरअसल रूह आजम की हैसियत में एक याददाश्त रखता है, यानी पूरा एक रिकॉर्ड रखता है। वो जो लोहे महफूज अल्लाह का है, वो इंसान को एक याददाश्त की सूरत में अपने उससे इनफरादी तौर पर जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है वो उसके हाफजे में मौजूद है। तो ये है रूह आजम की हैसियत में एक याददाश्त रखता है। उस याददाश्त को अगर वो याद करना चाहे, देखना चाहे, पढ़ना चाहे, या उसके फयूज से खुद को फैजयाब करना चाहे, यहाँ पे ये फैज और फयूज होना और फैज और बरकत हासिल करना, इसका भी उन्होंने तर्जमा कर दिया कि ये असल में क्या है, एबिलिटी को अपने अंदर उजागर करना ही फैज पाना है। फैज क्या है? किसी एबिलिटी को अपने अंदर उजागर कर लेना, जिसकी वजह से भी हो, गोया ये उसका फैज आपको मिल गया। क्योंकि हमें ये सारी बातें मुर्शिद करीम से मिल रही हैं, लिहाजा हम इसे यही कहेंगे कि हम अपने मुर्शिद करीम के अलूम से फैजयाब हो रहे हैं। तो उसे उस तरफ मतवज्जो होना पड़ेगा। फैज लेने के लिए क्या करना है? आपको तवज्जो देनी है। अब ये एक है खाली उस जहन होना, फिर है नुक्ते पे मरकूज करना जहन को, फिर ये कि उसके फयूज से फायदा उठाने के लिए या खुद को उनसे बहरामंद करने के लिए आपको उसकी तरफ मतवज्जो होना है। और मतवज्जो होने का अव्वल और आखर और आजमूदा तरीका मुराकबा है। अब गौर करें कि मुराकबा तवज्जो देने का नाम है और हम तस्वीर कशी में लगे होते हैं। तवज्जो, तवज्जो को एक नुक्ते पे रखने का नाम है मुराकबा। मैंने कितनी जगह बार बार फरमाया कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ये मुराकबा दरअसल एक कंसंट्रेशन है, मुराकबा कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है। कितनी बार ये सारे ये जुमला हम सब ने सुना हुआ है। वही बात वो लिखने में भी फरमा रहे हैं कि उसकी तरफ मतवज्जो होना पड़ेगा और मतवज्जो होने का अव्वल और आखर और आजमूदा तरीका मुराकबा है। मुराकबे में जैसे जैसे इन्हमाक पैदा होता चला जाता है, इन्हमाक दिलचस्पी को भी कहते हैं, गहराई को भी कहते हैं। दिलचस्पी के साथ जब आप किसी चीज में गहरे उतरते हैं तो उसको इन्हमाक कहते हैं। देखे ना, ये फोकस होने को कहते हैं अंग्रेजी में, यानी फोकसिंग इस दर्जे की हो कि आप इर्द गिर्द से बेखबर हो जाएं। देखे ना, एक आदमी बड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठा हुआ है, वो कोई किताब पढ़ रहा है, इतने में आप उसे आवाज़ दें, उसको सुनाई नहीं देगी आवाज़। ये रोज़ का मुशाहिदा है हमारा। कोई बंदा टीवी के किसी अच्छे प्रोग्राम को देख रहा हो जिसमें उसकी दिलचस्पी है, आप उसे आवाज़ दें, उसे नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका इन्हमाक वहाँ पे है। तो जैसे जैसे मुराकबे में इन्हमाक पैदा होता चला जाएगा, यानी कि मुराकबे में वो कैफियत तो इतारी करें कि जैसे हम किसी टीवी प्रोग्राम को देखते वक्त यकसू होकर इतने बेफिक्र हो जाते हैं, बेगम हो जाते हैं और उसमें इतने खो जाते हैं, तो इन्हमाक का एक मतलब है उसमें खो जाना। तो उसी मुनासबत से सालक उस यादाश्त को पढ़ने पर कुदरत हासिल कर लेता है जो उसके रूह आजम में एक यादाश्त की तौर मौजूद है। यानी वो सारा इल्म अल्लाह का, वो सारा प्रोग्राम एक यादाश्त की सूरत हमारे अपने लतीफ़े अख्फा में मौजूद है। मुराकबे में जहन मरकूज हो जाए तो तजल्लियात के नकूश ख्वाब में नजर आने लगते हैं। गौर करें, बात हो रही है मुराकबे की, और मुराकबे में जब इर्तकाज पैदा हो जाता है तो तजल्लियात के नकूश पहले दर्जे पे मुराकबे में नहीं नजर आते, इसलिए वहां देखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फिर वो पहले दर्जे पे ख्वाब में आते हैं, फिर उसके बाद और ज्यादा इन्हमाक पैदा हो जाए तो 11,000 तजल्लियात सालिक खुली आंखों से देख लेता है। फिर यह कैफियत होना शुरू हो जाती है कि वो कभी एक तजल्ली, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी दो, कभी एक, कभी चार, इस तरह से वो रफ्तार बढ़ती जाती है, सकत बढ़ती जाती है, और फिर एक अल्टीमेट टारगेट जो है वो ये कि 11,000 तजल्लियात तक उसकी जहन की रसाई हो जाती है। उस याददाश्त तक रसाई हासिल करने के लिए अगली बात, ये एक बात हो गई कि मुराकबा ज़रूरी है, उसमें इन्हमाक ज़रूरी है, तवज्जो ज़रूरी है, और बुनियादी बात क्या है कि नींद पर कंट्रोल हासिल किया जाए। ये चार जुमले हो गए, यानी नींद पर कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल का लफ्ज़ देखें, यानी आपको पूरा काबू हो, जब चाहें आप सो सकें, जब चाहें आप जागते रहें, जब तक आप चाहें जागते रहें। सालक इस चीज़ की मशक कैसे करता है कि 24 घंटे में 2.5 घंटे से ज़्यादा ना सोए, 21 घंटे 40 मिनट इसकी एग्जैक्ट मकदार लिखी है हजूर कलंदर बाब औलिया ने, तो हजूर मुर्शिद करीम ने उसे 2.5 घंटे बताया। 21 घंटे और 30 मिनट लगातार, यानी आदतन जागना है, इतना जागना सीखना है। अब ये बता रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है। हमारी आदत है कि हम जागने के बाद सो जाते हैं और सोने के बाद बेदार हो जाते हैं। आदमी जितने घंटे सोने की आदत डाल लेता है, इसको अंडरलाइन कर लें कि ये हमारी अपनी बनाई हुई आदतें हैं जिनको तोड़ना है। क्या? कि जितने घंटे सोने की आदत डाल ली जाती है, उसी मुनासबत से नींद उसकी तबीयत का तकाजा बन जाती है। इस तरह मैं अल्फाज को एक एक करके इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि ये एक एक लफ्ज इसकी कीमती है और इसको एक एक करके समझना ज़रूरी है। इसी मुनासबत से नींद उसकी तबीयत का तकाजा बन जाती है। तबीयत कहते हैं, ये नेचर नहीं है, ये वो जबिल्लत है जिसको कुरान जबल कहता है, ये हमने इसमें गाड़ दी है, ये गड़ी हुई चीज़ है, इसको पॉलिश करना है। तो तबीयत जो है तबा से लफ्ज है, तबीयत का लफ्ज तबा, छपा हुआ, जो चीज हमने छाप ली अपने जहन पे, प्रिंट कर ली, वो हमारी तबीयत बन गई। जरा गौर करें इंसान के रसाई का कितना, कि एक इसी मुनासबत से नींद उसकी तबीयत का तकाजा बन जाती। चूंकि हमें अल्लाह ने बताया सखर लकुमुल लैल वन नहार, کہ تمہیں پورا تسخیر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے تصرف میں دے دیا، لیل کو بھی اور نہار کو بھی، یعنی سونے کو بھی اور جاگنے کو بھی، یعنی رفتار ہے حواس کی، اس کو چاہے آپ بڑھائے رکھیں چاہے کم رکھیں۔ تو یہ آپ کی طبیعت کا عادی ہو جائے گا نا، بندہ ڈھائی گھنٹے سونے پہ، وہ چند دن تکلیف ہوتی ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں، اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے، کہ انسان نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح انسان کے اندر نگاہ یعنی نظر بیداری میں کام کرتی ہے، اسی طرح نگاہ سونے کی حالت میں کام کرتی ہے۔ البتہ دیکھنے کا عمل اور دیکھی ہوئی چیزوں کے نقوش گہرے یا ہلکے ہوتے ہیں، جب نقوش گہرے ہوتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیزیں زیادہ واضح طور پر ذہن کی سکرین پر محفوظ رہتی ہیں، خواہ وہ دیکھنا بیداری میں ہو یا دیکھنا خواب میں ہو، انسان گہرے نقوش کو یاد رکھتا ہے اور ہلکے نقوش کو بھلا دیتا ہے۔ اور گہرے نقوش کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں اس کی توجہ ہو، جن میں اس کو دلچسپی ہو، جن میں اس کا شغف ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ کسی بات کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف اپنی تمام تر، نہ صرف تمام بلکہ تر بھی، ہم اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوں، یعنی with all our possible abilities ہمیں پوری طرح اس کی طرف attentive ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ اور اس بات سے متعلق جتنے عوامل ہیں، جتنے محرکات ہیں، ان سے آگاہی حاصل کی جائے۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ سارے عوامل یعنی کیا فیکٹرز ہیں، اس میں کیا فیکٹرز انوالو ہیں، ہماری ذہنی صلاحیتوں کے استعمال میں کیا کیا محرکات ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو تحریک دیتی ہیں، کون سی صلاحیت کو کون سی چیز تحریک دیتی ہے، اس میں حرکت پیدا کرتی ہے، اور اس کے فیکٹرز کیا کیا ہیں، ان سب باتوں سے اس کو آگاہی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہونے، اللہ کی ذات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ کی تخلیق کی ہوئی کائنات میں تفکر کرنا ضروری ہے۔ یہ تفکر کسے کہتے ہیں، یہ ایک اور سوال ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اس کو کتنا پیچیدہ سمجھا ہوا ہے، میں اس کو بڑا سادے سے لفظوں میں کہتا ہوں۔ یہ جو ہماری سوچوں کا تانا بانا ہے، یہ جو سانچہ بنا ہوا ہماری سوچوں کا، یہ جو ہمیں سوچیں آتی ہیں، خیال آتے ہیں، بس اسی کا نام ہے تفکر۔ اب ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے، وہ بہت اچھی تصویر بنا سکتا ہے، لیکن کاغذ اور کینوس پر کبھی تصویر نہیں بناتا، تو اس کا تعارف مصور کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ کسی مصور کو ہم اس وقت مصور کہتے ہیں جب اس کی تخلیقات ہمارے سامنے ہوں۔ تو خالق کو پہچاننے اور خالق کی صفات سے وقوف حاصل کرنے کے لیے مخلوق کا پہچاننا اور یعنی مخلوق کا خالق کو پہچاننا اور پھر اس کے تخلیقی فارمولوں سے واقفیت، واقف ہونے سے مراد ہے وقف، وقفہ، رکنا۔ کیا کرنا ہے؟ تخلیقی فارمولوں پہ رک کے دھیان سے غور کرنا، اسے واقفیت کہتے ہیں۔ تخلیقی فارمولوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں دو بنیادی باتوں کا سراغ ملتا ہے۔ ایک یہ کہ کائنات کے اندر زندگی رواں دواں ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی رواں دواں ہے، ساتھ ہی یہ کہ زندگی کسی کے تابع ہے، یہ زندگی کی روانی کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ افراد کائنات کو زندہ رکھنے والی شے جب تک فرد کو زندگی منتقل کرتی رہتی ہے، فرد متحرک رہتا ہے، اور جب یہ شے فرد سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے، تو فرد زندگی کھو دیتا ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام افراد کائنات میں جاری ہو ساری ہے. اب اس شے کا نام روح ہے. دیکھیں وہاں پہ پیچھے تین درجے بتائے تھے, یہاں پہ صرف ایک بات کہی کہ یہ زندگی کو ہی روح کہا ہے. یہ جو زندگی فرد کو منتقل ہو رہی ہے یہ روح سے ہو رہی ہے. اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ لامتناہی ہیں اور غیر متغیر ہیں, لامتناہی ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لمٹ لیسنس, اور غیر متغیر, غیر متغیر یعنی ان ویریبل, اس میں ویریشن نہیں ہے, اور شکست و ریخت سے ماورا ہیں. شکست و ریخت ٹوٹ پھوٹ, ڈیٹیریوریشن سے ماورا ہیں. ہی از ابو اینی سارٹ آف ڈیٹیریوریشن. اس لیے اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی لا تغیر ہے. اب غور کریں کہ روح اللہ کا کہا ہوا ایک لفظ ہے, اور چونکہ اللہ خود لا متغیر ہے لہذا روح بھی لا متغیر ہے, اور مسلسل حرکت میں, ازل تا ابد حرکت میں رہے گا. عقدہ یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت ہے, یعنی اللہ کا لفظ, اللہ کا کہا ہوا لفظ دو باتیں رکھتا ہے, ایک تو وہ لا متغیر ہے, دوسرے مسلسل حرکت میں اور ازل سے ابد تک چلے گا. عقدہ یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت ہے, یہ اس سے یہ گرا کھل گئی. عقدہ عقد عقد سے ہے. اب کائنات کے اجزائے ترکیبی پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جو اس قانون سے باہر ہو. انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور نو انسانی کا کوئی فرد روح کی ساخت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے باور کرنا پڑتا ہے, یعنی اسے مان لینا پڑتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے. اور جب تک حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عمل کا صدور ہوتا رہتا ہے. عمل کا صدور ظاہر ہوتا رہتا ہے. یہ صدور کیا ہے؟ صادر ہونا, یعنی لاگو ہو جانا. کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہتا ہے, یعنی وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک حرکت ہے. لو بات ہی ختم. کلیہ یہ بنا, یعنی ٹوٹل بات یہ بنی, کلیہ کل سے کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک حرکت ہے, اور کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت, ایک سسٹم کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں. افراد, تمام افراد ایک نظام کے تحت, یعنی سسٹم کے تحت ایک دوسرے کے وابستگی, یعنی ان ریلیشن ٹو ادر تھنگس, جتنی بھی چیزیں ہیں. جیسے دیکھیں نا, ہم ہوا سے بھی رابطے میں, پانی سے بھی وابستہ ہیں, مٹی سے بھی وابستہ ہیں, درخت, پودے, یہ مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں, پرندے, درندے, چرندے, کسی نہ کسی طرح ان سے ہماری ایک نہ کوئی وابستگی ہے. اور اس وابستگی کو رکھتے ہوئے مسلسل حرکت میں ہیں. اب ظاہر حالات نے ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے. ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک اور پیدا ہونے کے بعد سے موت تک کوئی لمحہ, کوئی آن, کوئی گھڑی, کوئی دن, کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں حرکت نہ ہو. اب غور کریں کہ بچے کا دل کب دھڑکنا شروع کرتا ہے؟ پیدائش کے وقت نہیں, اس سے کتنا عرصہ پہلے, اور اس وقت سے وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بند نہیں ہو جاتا. جب بند ہوتا ہے تو وہ روح جو ہے وہ دوسرے لیول پہ چلی جاتی ہے. तो इंसानी जिंदगी का तजजिया जाहिर करता है कि हर इंसान दो दिमागों में बंद है। अब ये जिंदगी को आप एनालाइज करें, तजजिया यानी उसको एनालाइज करें, तो पता चलता है कि हर इंसान में दो किस्म के दिमाग काम कर रहे हैं, दो दिमागों में बंद है, या इंसानी जिंदगी दो दिमागों में तकसीम है। अब इन दो रुखों का तस्करा शऊर और लाशऊर के नाम से हो चुका है। देखे ना, खलकना ज़ौजैन, हर चीज को जोड़ों में बनाया, तो इंसान का शऊर है तो लाशऊर है, लाशऊर है तो शऊर है, तो ये जोड़ा है और इसी के जेरे असर दो दिमाग काम कर रहे हैं। तो जब इंसान शऊर में होता है तो उसकी कैफियत कैफियत अलग होती हैं, और जब इंसान लाशऊर में चला जाता है उसमें जिंदगी बसर करता है तो कैफियत डिफरेंट हो जाती हैं। अब आप लाशऊर में कब कब होते हैं, खुद जरा इसे नोट कीजिए। अब बचपन में 8-9 साल की उम्र सारी लाशऊरी कैफियत की है, लेकिन जूं जूं वो बालिग होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, 10-11-12-15 साल का होना शुरू होता है, उसकी कैफियत बदलती चली जाती है। इसी तरह आप नींद में होते हैं तो एक कैफियत में होते हैं, जाग रहे होते हैं तो एक कैफियत होती है, लेकिन हरकत किसी वक्त साकत नहीं होती। इसलिए आदमजात शौरी कैफियत में हो या लाशौरी कैफियत में हो, मुसलसल हरकत में रहता है। यानी आप शौरी कैफियत में हो या लाशौरी, हरकत जारी रहती है। जब कोई इंसान शौरी जिंदगी में हरकत करता है, ये कानून बता रहे हैं कि उसके ऊपर जमानो मकान की पाबंदी आयद होती है, शऊर की मजबूरी है, क्योंकि वो तरतीब से चलने का पाबंद है। पाबंद का मतलब है कि उसके ऊपर हैं पाबंदियां। जिंदगी के इस आधे रुख को बेदारी कहा जाता है। और जब कोई बंदा लाशौरी जिंदगी में सफर करता है और उसके ऊपर से जमानो मकान की गिरफ्त टूट जाती है, उस रुख को ख्वाब कहा जाता है। यानी जब बंदा लाशौरी जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो उसके ऊपर से जमानो मकान की गिरफ्त टूट जाती है, उस रुख को ख्वाब कहा जाता है। ख्वाब में हम ये नहीं कहते कि वो, देखें लफ्ज है टूट जाती है, ये नहीं कि वो खत्म हो जाती है, यानी वो रिलैक्स हो जाती है। देखने और समझने की तर्जों का तजिया करने से हमारे ऊपर इस कानून का इंकशाफ होता है। देखने और समझने की भी तर्जें होती हैं, हर बंदा देखता भी अलग अलग तरीके से, हर बंदा समझता भी अलग तरीके से, उसकी तर्जों का फिर तजिया करें तो ये बात पता चलती है, इस कानून का इंकशाफ होता है कि अगर हम अपने इरादे और इख्तियार से किसी अमल की तरफ मतवजो रहते हैं तो वह अमल हमें याद रहता है। गौर करें, इरादे और इख्तियार से किसी अमल की तरफ मतवजो रहते हैं तो अमल याद रहता है, और अगर हम अमल करने के बावजूद ज़हनी तौर पर उसकी तरफ मतवजो नहीं होते तो वो अमल भूल के खाने में जा पड़ता है। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। वो लोग जो सुट्टा लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो गौर करें बातें करते करते उनके हाथ लाशौरी तौर पे जाएंगे और वो सिगरेट निकाल के मुंह में लगा के जला के तो पीना शुरू कर देंगे, और बाद में उन्हें याद भी नहीं होगा कि मैंने डब्बी से इतने सिगरेट पिए, क्योंकि वो लाशौरी कैफियत में जाके पी रहे हैं। लेकिन अगर वो याद करके पिए शौरी तौर पर तो हर क्या कहते हैं कश पे ठुसका लगे। बेदारी और ख्वाब दोनों हालतों में, अच्छा ज़हनी तौर पर अगर वो मतवज्जो नहीं होता तो वो अमल भूल के खाने में जा पड़ता है, बेदारी और ख्वाब दोनों हालतों में ये सूरत मौजूद रहती है। जिस तरह कोई आदमी बेदारी में किए हुए अमाल और हरकत की तरफ मतवज्जो होकर उसे याद रखना चाहता है वो याद रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर ख्वाब की जिंदगी में किए हुए अमाल और हरकत की तरफ वो मतवज्जो रहे तो वो भी याद रहते हैं। गौर करें, याद रखने का कानून बताया कि तवज्जो देनी है उस तरफ, ठीक है, और वो भी इरादी तौर पर। तो चूंकि हम सोते में इरादी तौर पर वो हमारे काबू में नहीं होते, इरादे से हम ख्वाब नहीं देखते, अपनी मर्जी के ख्वाब देखना हमें आता नहीं है, तो लिहाजा वो याद भी नहीं रहते। तो आम मुशाहदा है कि जिंदगी दो तर्जों में से एक तर्ज ये है कि तबीयत आदमी को इस बात पर मजबूर करती है कि वो सो जाए, वही तबीयत जो छपी हुई चीज़ है कि वो सो जाए, फिर मजबूर करती है कि बेदार हो जाए। यानी तबीयत इस बात की आदि है कि आदमी को सुलाकर लाशऊर को बेदार कर दे। आप जब सो जाते हैं तो क्या होता है, आदमी सो गया तो आपका लाशऊर बेदार हो गया, ये तबीयत का ये भी तकाजा है। और आदमी को जगाकर जब आदमी जागता है तो वो लाशऊर को सुला देती है। लाशऊर को बेदार करने और लाशऊर की एक्टिविटी से वाकफियत हासिल करने के लिए हमें तबीयत की सादत को समझना पड़ेगा। ये इंतहाई जरूरी है कि हम अपनी तबीयत के जरा इस निजाम को समझें। हम इस बात की आदत डाल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेदार रहकर लाशऊर की हरकत को बेदारी में मुशाहिदा कर लें। क्या फरमा रहे हैं कि हम इस बात की आदत डाल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेदार रहकर लाशऊर की हरकत को बेदारी में मुशाहिदा कर लें। शुरू शुरू में इस आदत की खिलाफ वर्जी करना तबीयत के लिए बार बनता है, बोझ बनता है। और अगर आदमी मश्क 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 जारी रखे, यानी नींद को करीब ना आने दे, तो दो दिन और दो रात गुजरने के बाद तबीयत में ऐसा ठहराव आ जाता है कि लाशऊरी हरकत बंद आंखों के सामने आने लगती हैं। ये असल में दो दिन और दो रात जो है ये बनते टोटल हैं, कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, इसे कहते हैं कि तीन दिन 72 घंटे का प्रोग्राम है ये। 72 घंटे लगातार जागना, फिर 72 घंटे के बाद 2.5 घंटे सोना, इसकी आदत डालनी पड़ती है। तो उसे फिर ये तबीयत में ऐसा ठहराव आ जाता है कि लाशऊरी हरकत, जो लाशऊरी हरकत जिसे आप सिर्फ ख्वाब में देखते हैं, वो बंद आंखों के सामने आने लगती है। आंख बंद करेंगे तो वो आ जाएगी। इसी तरह कई हफ्ते या कई माह अगर जागने का एहतमाम किया जाए, कितना, कई हफ्ते कई माह, और हम जैसों को तो कई साल की मश्क चाहिए, तो खुली आंखों के सामने भी लाशऊरी हरकत आने लगती हैं। और दर्जा बदर्जा यानी स्टेज बाय स्टेज, तबकन अन तबका, आदमी गैब की दुनिया से मुतारिफ होता चला जाता है। बंद आंखों से लाशऊरी जिंदगी को देखना या गैब की दुनिया में दाखिल होकर गैब की दुनिया से मुतारिफ होना तसव्वुफ की इस्तलाह में विरूद कहलाता है। और मश्क करते करते निगाह के अंदर इतनी सकत पैदा हो जाती है कि आदमी बेदारी की हालत में, बेदारी की हालत में जागते हुए खुली आंखों से बातनी दुनिया का भी मुशाहिदा साथ साथ कर रहा होता है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर इस हालत का नाम शहूद है। गौर करें, शहूद किसे कहते हैं और ये कैसे हासिल होता है। अगला जुमला सुन लीजिए, जरूरी है कि ये मश्क मुर्शिदे करीम की निगरानी में की जाए, बसूरत दीगर दिमागी खलल वाक्या हो जाता है। साफ लिख दिया कि बंदे का दिमाग चल सकता है। रूहानी उस्ताद या मुर्शिद सालिक को उस वक्त मश्क कराएं, जो भी आपका टीचर हो या वो मुर्शिदे करीम हो, वो ये आगे आइंदा के लिए उन्होंने लिख दिया कि जब भी कोई आपका रूहानी टीचर बने या कोई भी हो, तो वो खुद इन मशकों से गुजर कर मावराई दुनिया का मुतालिया कर चुका हो, उसको ये मशकें कर कर ये सारा कुछ उस पर वाजे हो, तभी वो दूसरों को गाइड कर सकता है, वरना तो हक ही नहीं बनता। यहाँ पे जिसने चार में पढ़ लिए वही टीचर बन जाता है। इसी वजह से मैं आपसे दस बस्ता अर्ज करता हूँ कि अज़राए शफकत आप मुझे अपना भाई समझें, टीचर ना समझें प्लीज। ठीक हो गया जी।
एम सो ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया।